मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 3 फरवरी 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मेरा थोड़ा गला खराब है, आप लोग जरा बियर कीजिएगा, बीच में इस तरह की आवाजें आप लोगों को सुनाई पड़ती रहेंगी। दोस्तों, मेरे पास मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से जो मेल आ रहे हैं उन मेल्स में भावनात्मक समस्याओं की कुछ ज्यादा ही चर्चा पढ़ने को मिल रही है। इस मायने में कि कुछ स्टूडेंट अपने आपसी संबंधों को लेकर के परेशान हैं, कुछ परिवार का सहयोग न मिल पाने के कारण परेशान हैं, कुछ सच पूछे तो समाज में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको लेकर के परेशान हैं, कुछ इसलिए भी परेशान हैं कि गरीबी इतनी ज्यादा क्यों है। कभी कभी टीवी पर चैनल्स पर इस तरह की खबरें आ जाती हैं, उनके दृश्य भी दिखा दिए जाते हैं, तो इस तरह के दृश्य परेशान करने लगते हैं और वो परेशानी किसी भी सीमा तक बढ़ जाती है। कुछ इसलिए भी परेशान हैं कि वो इतने समय से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं। तो इस तरह की परेशानियां पिछले कुछ दिनों के मेल में मुझे ज्यादा महसूस हो रही हैं। मुझे लगा कि आज के अपने इस लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से में मुझे थोड़ी सी चर्चा इस बात की करनी चाहिए, क्योंकि यदि समस्या है तो डेफिनेटली उस समस्या के निदान की तरफ ध्यान दिया ही जाना चाहिए। मित्रों, मेरे जो पुराने श्रोता रहे हैं उनको याद होगा कि मैंने इमोशंस और लॉजिक को लेकर के बहुत लंबी बातचीत आप लोगों से की थी, बहुत लंबी बातचीत मेरी समझ से शायद हमने 7-8 एपिसोड लाइफ मैनेजमेंट के इसी हिस्से पर अलग से किए थे। वैसे अगर आप ऑडियो, जो ऑडियो फॉर एक्सीलेंस है, अगर वो आप सुन रहे हो तो उसमें भी मैंने स्पेशली जो मेंटल स्ट्रेंथ की बात कही है, जो मेंटल एनर्जी की बात कही है, वो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें मैंने दो एनर्जी की बात की थी, एक मेंटल एनर्जी और इसके बाद फिर सेकेंड थर्ड में रखा था मैंने इमोशनल एनर्जी, फर्स्ट तो फिजिकल एनर्जी थी ही और फोर्थ में स्पिरिचुअल एनर्जी पर अभी बातचीत कर रहा हूं। दोस्तों, उसमें मैंने स्पेशली पिछले इस बार के ऑडियो फॉर एक्सीलेंस में आपसे सेंसिटिविटी और इमोशंस में अंतर बताने की कोशिश की थी। हमें किसी भी चीज के बारे में फ्रेंड्स निर्णय लेने के लिए मुझे लगता है कि दो बातों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। देखिए, जोश खरोश की बात अलग है, आइडियलिज्म की बात अलग है। अभी जो आप सबकी उम्र है एक आदर्शवादिता की उम्र होती है, हम लोगों की भी एक उम्र थी, हर की एक उम्र होती है जब हम आदर्शों में ज्यादा जीवित रहते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि कोई भी हमारे देश में भूखा न रहे, करप्शन न हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, सभी सुरक्षित जीवन जिए, साफ सुथरा हमारा देश हो, ये हर कोई चाहता है और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर करते हैं तो चीजें बिल्कुल बदल जाती हैं। इसलिए जब भी हम निर्णय लें किसी भी इन ऐसे इश्यूज के बारे में, हमारे दिमाग में दो तथ्य बहुत स्पष्ट होने चाहिए। पहला जो तथ्य है दोस्तों, वो है हमारी अपनी स्थिति, कि हम अभी किस स्थिति में हैं। देखिए, अर्थ किसी भी चीज का तब होता है जब हम उसमें हस्तक्षेप कर सके। मान लीजिए कि हम बैठ करके केवल एक परेशान से हो रहे हैं कि हमारा देश गरीब है, हमारे देश में भ्रष्टाचार है, फलाना 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 फलाना, हम परेशान हो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम इसके बारे में दूसरों से बहस कर रहे हैं, उससे क्या होना जाना है? उससे कुछ नहीं होना जाना, सदियों से यही होता चला आ रहा है। तो किससे होना जाना है आप प्रश्न करेंगे, तो क्या हम सोचना बंद कर दें, क्या किसी से बात करना बंद कर दें? बिल्कुल भी नहीं, मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, आप इसे इस रूप में बिल्कुल भी न लें। आप जो सोच रहे हैं डेफिनेटली सोचने से ही तो आगे फिर कदम बढ़ेंगे, अगर आप सोचेंगे ही नहीं या कोई भी नहीं सोचेगा तो कुछ नहीं होगा। जो चीजें जैसी चलती आ रही हैं वैसी ही चलती रहेंगी। तो शुरुआत तो सोचने से ही होती है, लेकिन आपको देखना होगा कि इस सोचने को आप अभी किस स्थिति में हैं कि आप करने में ढाल सकें, क्या आप कुछ कर सकते हैं। और अगर लगता है आपको कि हां मैं कुछ कर सकता हूं तो फिर किया जाना चाहिए। और आपको लगता है कि नहीं मैं अभी कुछ नहीं कर सकता और आपकी चिंता जायज है, तो फिर आपको कोशिश यह करनी चाहिए कि नहीं अब मैं अपने आप को कुछ ऐसा बनाऊं कि मैं इस बारे में कुछ कर सकूं। यही स्थिति की बात है कि आप देखिए कि आप अभी किस स्थिति में हैं। तो अपनी स्थिति का हमेशा किसी भी निर्णय में ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरी बात यह है मित्रों, वो है रियलिज्म की, रियलिस्टिक होने की, यथार्थवादी होने की। आदर्शवाद बहुत अच्छी बात होती है और इस मायने में अच्छी बात होती है क्योंकि आदर्शवाद से ही परिवर्तन की शुरुआत होती है। हर कोई आदर्श को पाना चाहता है, लेकिन आदर्श बेसिकली एक ऐसे टारगेट होते हैं जो हमारे लिए मंजिल का काम करते हैं, हम उस दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन एक जो प्योर आइडियलिज्म होता है, जो परफेक्ट आइडियलिज्म होता है, वो कभी मिलता नहीं है। अगर वो मिल जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि एक नया आइडियलिज्म तैयार हो जाएगा, एक नया आदर्शवाद तैयार हो जाएगा। क्योंकि कोई भी समाज जो जीवंत समाज है, जो जीवंत राष्ट्र है, मनुष्य एक जीवित चेतना का प्राणी है, उससे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही एक परफेक्ट आइडियलिज्म की स्थापना हो जाएगी। हजारों हजारों साल का इतिहास इस बात का गवाह है कि हमने केवल आदर्शवाद को पाने की कोशिश की है और उस कोशिश में डेफिनेटली हम बेहतर होते चले गए हैं, लेकिन कभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि हमने उसको 100% पा लिया हो और इसके बाद कुछ करने की और कुछ पाने की जरूरत ही नहीं रह गई है। तो मित्रों, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने डिसीजन मेकिंग के लिए आपको बताए हैं, अपनी स्थिति का मूल्यांकन। अगर आप अभी कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है तो फालतू के सोचने से कुछ परिवर्तन नहीं होगा। आप सोचिए, लेकिन आप उस सोचने में अपने आप को कमजोर मत कीजिए। कोई ऐसा कदम मत उठाइए कि आपके दिमाग में जो एक विद्रोह की भावना है, जो एक क्रांति धधक रही है, कुछ बदलने और कुछ करने का जो जुनून पैदा हो गया है वो ठंडा पड़ जाए या वो बिखर जाए, वो खत्म हो जाए, उससे कुछ नहीं होगा। अगर आप सच में करना चाहते हैं तो मैं रिपीट करूंगा कि आप उसके योग्य खुद को बनाइए। और डेफिनेटली अगर आप सिविल सर्विस जाने में जाने के बारे में सोच रहे हैं और आप अपने इस आइडियलिज्म को जीना चाहते हैं तो वहां जी सकते हैं, काफी कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, लोग यही कहते हैं कि सिविल सर्विस में जाने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं, फलाना फलाना, ऐसा नहीं है मित्रों। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जा करके कर रहे हैं, उनके भी प्रमाण हमारे सामने मौजूद हैं। और दूसरी बात दोस्तों, मैंने जो आदर्शवाद की बात कही उसको रियलिज्म में कन्वर्ट कीजिए। हम स्थिति को बेहतर करने में ही अपना योगदान कर सकते हैं, बिल्कुल बेहतर कर नहीं सकते क्योंकि इतना बड़ा समाज है, इतनी बड़ी दुनिया है, यहां हजारों लाखों करोड़ों लोग रह रहे हैं। कुछ समय ये लोग रहते हैं, इसके बाद फिर नई पीढ़ी आती है, फिर उसको नई पीढ़ी रिप्लेस करती है। तो ये तो एक सतत प्रवाहित समाज है जो लगातार फ्लो हो रहा है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। आज हम जिस समाज में सांस ले रहे हैं, रह रहे हैं, वो हमारे पहले के लोगों द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित किया गया समाज है। इसको हमने कुछ बदला है, कुछ दिया है, कुछ इससे काफी कुछ लिया है, कुछ खराब किया है, कुछ बेहतर बनाया है, और हम इस समाज को आगे आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़कर जाएंगे। आने वाली पीढ़ी फिर इस समाज के साथ इंटरेक्शन करेगी, इसको कुछ बदलेगी, अच्छा बुरा जो भी उससे होगा बनाएगी, करेगी, और ये इस तरह से ये कंटिन्यूटी लगातार चलती रहती है। तो मित्रों, आपको सही बात तो ये है कि रियलिस्टिक होना जरूरी है। आपके अंदर वो मेंटल स्ट्रेंथ आनी ही चाहिए। कोई भी स्थिति अपने दिमाग में ऐसी मत आने दीजिए जो आपको कमजोर करे, तनिक भी कमजोर करे। मान करके चलिए कि आज आपको जो भी स्थिति जितनी भी बुरी दिखाई दे रही हो वो वैसी नहीं रह जाएगी। क्या आज से 6 महीने पहले, साल भर पहले या 15 दिन पहले जो आपकी स्थिति थी, जो आप सोचते थे, क्या आज भी स्थिति बिल्कुल वही है? नहीं। तो यदि वह स्थिति आज नहीं है तो आप ये क्यों मान करके चलते हैं कि आज की स्थिति हमेशा ही रहेगी? हर वर्तमान को अतीत में परिवर्तित होना ही होना है। आज की स्थितियां भी बदलेंगी, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें। जीवन कभी भी खत्म नहीं होता है, प्लीज इसे आप नोट कर लें। इसके अंदर इसकी अंतर्निहित शक्ति इतनी प्रबल है, इतनी मजबूत है कि यह किसी भी स्थिति का मुकाबला कर सकती है और उसको पार करके कोई भी एक नया रच सकती है, नया बना सकती है। और वह जो नया बनेगा, जो नया रचा जाएगा, हो सकता है कि वो इतना बड़ा हो, इतना खूबसूरत हो, जिसके आपने उम्मीद ही नहीं की थी। मेरे नौजवान साथियों, मैं आप लोगों से सही मायने में रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोगों को चाहिए, आप सब कोर्स की किताबें पढ़ रहे हैं और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे, दूसरी चीजें भी आप पढ़ रहे होंगे, धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे होंगे, लेकिन मेरे एक रिक्वेस्ट आप सबसे है, प्लीज आप सब बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी को भी अपने इन ग्रंथों में शामिल कर लें। जब आप ऑटोबायोग्राफीज पढ़ेंगे, जीवनियां पढ़ेंगे, आत्मकथाएं पढ़ेंगे, तब आपको पता लगेगा कि सच में जीवन होता क्या है। अदरवाइज तो फिर हम यही समझते हैं कि जो हमारा जीवन है वही सब कुछ है और ये बहुत बुरा है। बहुत खूबसूरत दो लाइनें हैं, उसको सिर्फ अपना ही गम है, सच वह जानता कितना कम है। दोस्तों, जब आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, जब बायोग्राफी पढ़ेंगे, तब आप दूसरों को जान सकेंगे और ये जो दूसरों को जानना होगा, तब आपको जीवन का एक व्यापक स्वरूप, वह विराट स्वरूप दिखाई देगा जो गीता में कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था। तब आप जीवन का सही साक्षात्कार कर पाएंगे और जीवन का यह सही साक्षात्कार आपको सही जीवन से परिचित करा करके सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेगा। मित्रों, कोई ऐसा कारण नहीं है जहां हम निराश हों, चाहे हमारी उम्र 75 साल की ही क्यों ना हो गई हो। आप सबकी तो उम्र अभी 25 के आसपास ही है, आपके सामने तो कोई कारण ही नहीं है जरा भी निराश होने का, जरा भी कमजोर होने का और जरा भी कोई भी नेगेटिव थॉट्स दिमाग में लाने का और नेगेटिव स्टेप्स अपनी लाइफ में उठाने का भी। मित्रों, मुझे विश्वास है कि आप मेरे इन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, साथ ही बार बार सुनेंगे और फिर इन पर सोचेंगे भी, और जब आप सोचेंगे तो डेफिनेटली शायद मुझे आप गलत ना पाएं और आप अपने अंदर एक मजबूती का एहसास करके अपनी ताकत को पहचान सकें, और ताकत को पहचानने के बाद उसको सही रूप में लगाकर आप अपने उन आदर्शों को साकार कर सकें जो आपको अभी परेशान कर रहे हैं, तभी ये परेशानी दूर हो सकेगी। मित्रों, लाइफ मैनेजमेंट के इस हिस्से के बाद अब मैं आता हूं कल के आकाशवाणी के समाचार पर, और हमारे पास आज बातचीत करने के लिए ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं, आकाशवाणी समाचार से भी ढेर सारे हैं, और सच पूछे तो आज क्लिपिंग्स भी खूब हैं, खूब खूब क्लिपिंग्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर क्लिपिंग्स हैं। तो क्लिपिंग्स तो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा ही, समय जितने की इजाजत देगा उतने टॉपिक्स पर हम लोग बातें करेंगे, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर तो हम लोग बातचीत कर ही लें। दोस्तों, जो पहली खबर थी, जो कल चैनल्स की भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर रही है, आज अखबारों की भी इंपॉर्टेंट खबर है, रेडियो न्यूज की भी जो पहली खबर थी वो आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब एक क्यूरेटिव याचिका एक्सेप्ट की है, जो हमारे संविधान की धारा, ये आपराधिक दंड संहिता की धारा 377 पर विचार करेगा। यह बेसिकली क्या है, थोड़ा सा आप इसके इसका परिचय ले लीजिए। दोस्तों, समलैंगिकता सही मायने में बहुत पुराने समय से ही आलोचना के केंद्र में रही है। इंग्लैंड का एक पीरियड रहा है जिसको विक्टोरियन एज कहा जाता है, जब आप इंग्लैंड का इतिहास पढ़ेंगे तो विक्टोरियन एज आया है। विक्टोरियन एज में चीजें बहुत अधिक नैतिकवादी थी, तो नाम से ही जाना जाता है, मतलब आप कोई गलत शब्द नहीं बोल सकते, कोई गलत कदम नहीं उठा सकते। नैतिकता का बहुत जबरदस्त बोलबाला था। तो ये मैं जो गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं उसका मतलब नहीं कि कोई आपको गलत करने की छूट है, उसको गलत माना जाता था। बस उस समय के विक्टोरियन वैल्यू सिस्टम में वो चीजें गलत थी जो आज बहुत आम चीजें हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत में जब 1862 में हमारे यहां भारतीय दंड संहिता आया तो उसके बाद उसमें जो समलैंगिकता थी उसको अपराध ठहरा दिया गया, और अपराध भी सामान्य नहीं, काफी बड़ा अपराध किया, आपको 10 साल की सजा हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। हम आजाद हो गए 1862 के बाद से। आप सोच करके देखिए कि लगभग लगभग हमने 75 साल का सफर, आगे 80 साल का सफर, 85 साल का सफर पूरा किया और हमने अपना संविधान बनाया। संविधान बनाने के बाद उसमें जीवन का अधिकार और समानता का अधिकार हमने प्रोवाइड किया, जीवन जीने का अधिकार। अब उस जीवन जीने के अधिकार में ये जो समलैंगिकता है उसका टकराव होने लगा, पहली बात। दूसरी बात आप देखेंगे कि पिछले लगभग 100 सालों से अगर देखें और खासकर 1950 के बाद, क्योंकि 1950 के बाद आप देखते हैं कि धीरे 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 टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़े जबरदस्त परिवर्तन आने लगे। रेडियो आया, रेडियो के बाद टेलीविजन आया, टेलीविजन के बाद फिर सोशल मीडिया आया, फिर मोबाइल आया, सैटेलाइट्स आ गए। तो धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी ने, सच पूछे तो हमारी सामाजिक संरचना और चेतना दोनों को बहुत जबरदस्त रूप से बदला है, बहुत ही जबरदस्त रूप से बदला है। और जब हमारी सामाजिक चेतना और सामाजिक संरचना बदली तो उसके पैरेलल सामाजिक वैल्यू बदलेंगे ही, तो सामाजिक वैल्यू भी बहुत ज्यादा बदले। और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ हिंदुस्तान में ही हुआ है, यह पूरी दुनिया में हुआ है। आपको अखबारों में अक्सर आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, केवल समलैंगिकता की बात नहीं मिलेगी, अपोजिट की मिलेगी, और आपको जो खासकर जिन्हें हम किन्नर कहते हैं वो अपने अलग अधिकारों की मांग कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी दुनिया में ये चीजें हुई और कई देशों ने इसे एक्सेप्ट भी किया, आंदोलनों के बाद इसे एक्सेप्ट भी किया। भारत अब लगभग लगभग उसी कह लीजिए कि लाइन पर आगे बढ़ रहा है। इसकी शुरुआत जब हुई थी वो 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस धारा 377 को असंवैधानिक ठहराया था। ये नॉन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है? क्योंकि ये जो है उनको, जो लोग हैं, जीने के अधिकार से वंचित कर रहा है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है। अब मुश्किल ये था कि आपने उसे असंवैधानिक तो ठहरा दिया, लेकिन जो कानून है, कानून बनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है या हाई कोर्ट को नहीं है। अगर कानून को बदलना है तो बट नेचुरल है कि वो पावर हमारे पास हमारे संविधान ने जन प्रतिनिधियों को दिया है, आइदर पार्लियामेंट आर स्टेट असेंबलीज। राष्ट्रीय अगर केंद्रीय सूची का विषय है तो बट नेचुरल है कि संसद, और अगर राज्यों के सूची का विषय है तो फिर वो विधानसभाएं। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने भी जब इसके दिल्ली हाई कोर्ट की बात जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस वर्डिक्ट को उलट दिया और साफ साफ उन्होंने यही कहा कि कानून में बदलाव संसद कर सकती है, कोर्ट नहीं कर सकती। मित्रों फिर ये बात आगे बढ़ती गई और 2014 में फिर एक बहुत ही माइलस्टोन डिसीजन आया, एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन आया जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था और उसने कहा जो ट्रांसजेंडर्स हैं किन्नर, उन्होंने थर्ड जेंडर माना, मतलब उनको पहली बार आप कह लीजिए कि इस तरह से संवैधानिक और कानूनी मान्यता मिली। और आपने देखा होगा कि पिछले 10-15 सालों में बहुत से किन्नर चुनाव लड़े और यहां तक कि वो पंचायतों के हेड बने, नगर पालिकाओं के हेड बने, और उन्होंने काम करके भी दिखाया। तो अगर एक प्राकृतिक स्थिति है किन्नर की और जिनके लिए वो खुद जिम्मेदार नहीं है, प्रकृति ने उनको ऐसा बनाया है, तो क्या इसी के आधार पर उनको समानता और जीने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? नहीं। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें थर्ड जेंडर माना। अब सवाल यह हो रहा है, आप देखिए कि धीरे धीरे यहां तक कि एक देश आयरलैंड, जहां पर जो बहुत ही ज्यादा मैंने बताया वो भी इंग्लैंड का ही हिस्सा है और विक्टोरियन एज की मैंने अभी आपसे बात कही थी, वहां अभी भी बहुत ही ट्रेडिशनल वैल्यूज इस्टेब्लिश हैं। वहां भी जब जनमत संग्रह कराया गया तो वहां भी लोगों ने कहा कि नहीं, ये जो समलैंगिक विवाह है उसकी अनुमति दी जानी चाहिए। अमेरिका में भी ऐसा हुआ, फिर बाद में बहुत से देशों ने इसे एक्सेप्ट किया। तो देखिए, आज जब हम कहते हैं कि पूरी दुनिया एक हो गई है तो स्वाभाविक रूप से इन बातों का प्रभाव दूसरे देशों पर भी पड़ता ही है। तो लगातार इस तरह की मांगें की जाती रही थी और हम लोगों ने इस पर अपने डेली ऑडियो में बहुत डिटेल में चर्चा भी की थी और मैंने, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ये आर्टिकल भी अपने नॉलेज सेंटर पर प्रोवाइड किया था कि हमारे जो कांग्रेस के सांसद शशि थरूर जी, वो अपना एक निजी विधेयक, प्राइवेट बिल भी लेकर के आए थे और वो बिल उनके इसी धारा 377 के विरुद्ध था। तो अब एक स्थिति ऐसी आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट चूंकि पहले कह चुका था कि यह अधिकार केवल संसद का है, तो अब इस पर वो है पुनर्विचार करने के लिए तैयार हो गया है। और चूंकि अब यह मामला एक तरह से संवैधानिक मामला बन गया है जो जीवन को जीने की स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा हुआ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से अब यह संविधान पीठ को सौंपा गया है। और आपको मालूम है कि जब कोई भी मामला संविधान पीठ को सौंपा जाता है तो वहां एक जज नहीं होते, एक बेंच होती है, जनरली 3 या 5 जजेस की बेंच बनाई जाती है और सामान्यतः ज्यादातर 5 जजेस की बेंच होती है। अब वो इस पर विचार करके अपनी राय देंगे। तो मित्रों, इस लिहाज से ये जो इशू है धारा 377 की संवैधानिकता, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसके लिए अलग से पेजेज सुरक्षित रखें, देखें कि इस पर क्या बहस होती है, लोग क्या तर्क देते हैं, अपनी अपनी बातों को किस तरीके से रखते हैं। आप बकायदे पक्ष और विपक्ष में रखी गई बातों को नोट करते जाएं और फिर देखें कि क्या निष्कर्ष निकलता है। ये मुझे लगता है कि सिविल सर्विस के लिए आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी जो खबर है दोस्तों, वो भी ऑल इंडिया रेडियो की दूसरे नंबर की ही खबर थी, वो खासकर आरक्षण को लेकर थी। ये भी एक बहुत जबरदस्त इशू आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे बनता चला जा रहा है। वर्तमान में ये इशू खासकर गुजरात में जो पटेल समुदाय ने आरक्षण के लिए मांग की थी, वहां से इसने एक नया टर्न लिया। इससे पहले जाट समुदाय मांग कर रहे थे राजस्थान के, उन्होंने भी इसको लेकर के आंदोलन किए, फिर पटेल समुदाय ने मांग की। हार्दिक पटेल का नाम आपने सुना होगा, जो बिल्कुल यंग है, हार्दिक 24-25 ईयर्स के युवा हैं, उन्होंने मांग करनी शुरू कर दी। और अब जो है आंध्र प्रदेश का जो कापू समुदाय है वो इसकी मांग कर रहा है, जिसके बारे में कल हम लोगों ने थोड़ी सी बात भी की थी। इसी से ठीक पहले, बिहार चुनाव से पहले जो एक बात आई थी कि आरक्षण पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। पुनर्विचार करने का मतलब यह नहीं था कि आरक्षण रहे या न रहे, बल्कि उसका कहने का अर्थ यह था कि आरक्षण की व्यवस्था किस तरीके से की जाए, इसको कैसे ज्यादा से ज्यादा लॉजिकल बनाया जाए। लेकिन वह मामला कुछ इस तरीके से बहस में आया कि सरकार आरक्षण को खत्म ही करने की बात कह रही है। इसीलिए आपने न्यूज में सुना कि प्राइम मिनिस्टर ने अश्योर किया है कि आरक्षण जब तक बाबा साहब अंबेडकर का नाम रहेगा तब तक इस देश में आरक्षण कोई खत्म कर ही नहीं सकता। उन्होंने अपने लिए कहा कि आरक्षण खत्म करने के से भयभीत नहीं होना चाहिए, हमारे लिए जरूरी है। मित्रों, अब ये जो आरक्षण का मामला है, इस पर आपको सिविल सर्विस के लिहाज से अब 2-3 अलग अलग एंगल से विचार करना चाहिए। नो डाउट कि आज हमारे पास लगभग समझ लीजिए कि 60-65 साल हो गए हैं आरक्षण की व्यवस्था को करते हुए, और हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से फेल ही रही है। जिन्हें आरक्षण दिया गया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और यहां तक कि फिर बाद में ओबीसी को, तो उसमें से एक छोटा सा तबका है जो इमर्ज हुआ और उन्होंने अपने समाज का नेतृत्व किया। और जब आप आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, सांस्कृतिक रूप से मजबूत होते हैं, तो उसका असर सिर्फ एक ही व्यक्ति पर नहीं पड़ता बल्कि उसके पूरे समुदाय पर पड़ता है, और वो तो हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका एक इलॉजिकल पक्ष भी है। इलॉजिकल पक्ष ये है कि जिन्हें एक बार आरक्षण मिला उनकी नेक्स्ट पीढ़ी को आरक्षण मिला, पता लग रहा है कि फिर जो आरक्षण का लाभ है उन्हीं पीढ़ी के उन्हीं के सदस्यों को लगातार मिलता जा रहा है, ऐसा समाजशास्त्री अनुभव करते हैं। उसका कारण भी है क्योंकि जिन्हें एक बार आरक्षण मिल गया है स्वाभाविक रूप से अब उनकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हो गई है। तो अब ये भले ही जाति के आधार पर तो आरक्षित समूह में आते हैं लेकिन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आधार पर उस समूह में नहीं आते, उनसे काफी बेटर है। अब उन्हीं के अपने समूह के लोगों का जो कॉम्पिटिशन होगा ये इस उन्नत समूह से होगा जो अपने ही जाति व्यवस्था में ऊंचाई पर पहुंच चुका है, तो स्वाभाविक रूप से उसका फायदा इनको मिलेगा। तो जो वंचित रह गए हैं उनको इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है, ये इसका एक इलॉजिकल पार्ट है जिसके बारे में बार बार ये कहा जाता है कि इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए कि इसको हम कैसे ठीक करें। इसलिए देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि कई बार इस तरीके की मांग उठती है, इस तरह की मांग उठती है कि अब सामाजिक और सांस्कृतिक आधार को हटा दिया जाए, जाति के आधार को हटा दिया जाए और सीधे सीधे आर्थिक आधार को लिया जाए और उसमें पूरे देश को शामिल कर लिया जाए। यह भी एक सवाल लोग उठाते हैं, सलाह देते हैं। अब मित्रों, अब तीन अभी जो आंदोलन चल रहे हैं उसमें तीन समुदायों को आप देखिए, राजस्थान के जाट, उत्तर भारत का जाट समुदाय, दूसरा गुजरात में जो पाटीदार हैं और तीसरा आंध्र प्रदेश में कापू समुदाय। ये तीन समुदाय हैं जो अभी आंदोलन कर रहे हैं। एक बहुत विचित्र सी बात है जो समाजशास्त्रियों को थोड़े से चिंतित कर रही है और सोचने की बात है कि ये तीनों समुदाय खेतीहर हैं और अच्छे हैं, आर्थिक रूप से इनकी स्थिति बेहतर है, न केवल आर्थिक रूप से ही बेहतर है बल्कि ये समुदाय के काफी लोग राजनीति में भी प्रोमिनेंट पोजिशन पर हैं, उद्योग धंधों में भी अच्छे हैं, भले ही वो छोटे उद्योग हों लेकिन इनकी स्थिति बेहतर है और ये खेत किसानी भी कर रहे हैं। अब सवाल ये कि अगर इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर है तो फिर ये आरक्षण की मांग क्यों कर रहे हैं, ये एक अलग एंगल देता है सोचने के लिए कि क्या कारण है। मित्रों, इसके लिए दो बातें स्पेशली कही जाती हैं। पहली बात तो यह कि अब इन समुदाय के लोगों को यह लग रहा है कि जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी में ही जो बहुत अच्छे स्थिति पर आ गए हैं, अगर वो उस नाम से आरक्षण पा रहे हैं तो फिर हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो वो जो मैंने अभी इलॉजिकल उस सिचुएशन की बात कही थी उसको ये अपना तर्क देते हैं। दूसरा, जो अर्थशास्त्र की दृष्टि से इस समस्या को देखते हैं, आर्थिक दृष्टि से, वो इसे दो बातों से जोड़कर देखते हैं। फ्रेंड्स, एक तो ये है कि पिछले कुछ सालों से जो खेती का काम है वो नुकसान का काम हो गया है। हम लोग इस पर बात भी कर चुके हैं कि खेती अब फायदे का व्यवसाय नहीं रह गया, व्यापार नहीं रह गया या उद्योग नहीं रहेगा, जो भी आप नाम दें, लागत पर आधारित हो गई है और खेती में अब लोगों को नुकसान होने लगा है। तो बहुत ज्यादा लोग खेती से फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, अपने को विड्रा कर रहे हैं, तो इनके ऊपर प्रेशर आ गया। जो तीनों के तीनों जो खेतीहर समूह के लोग हैं अब इनको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। दूसरा यह हुआ कि ये बहुत से छोटे छोटे बिजनेस में, छोटे छोटे उद्योगों में लगे हुए थे, छोटे छोटे बिजनेस करते थे, कम पूंजी का बिजनेस कर लिया, छोटे छोटे अपने धंधे खोल लिए। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हाई होती जा रही है और ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, नई विश्व व्यवस्था इमर्ज हो रही है, वैसे वैसे अब बड़ी पूंजी की जरूरत होने लगी है और इस बड़ी पूंजी ने छोटी पूंजी को खत्म कर दिया है। ऑनलाइन जो व्यापार शुरू हुआ है वो इसका एक प्रमाण है, जिसके कारण अब छोटे छोटे दुकानदारों के लिए उतनी जगह नहीं बच पा रही है। जो बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं वो छोटे उद्योगों को नष्ट कर रहे हैं, तो वहां से अब ये खाली हो रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि जब पाटीदार समुदाय आरक्षण को लेकर के जब आंदोलन कर रहा था तो उस पर कई इस तरह के लेख आए थे कि किस तरह से सूरत, जो डायमंड का बहुत बड़ा सेंटर था, धीरे 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 वहां से सब सूरत में डायमंड का काम करने वाले जो मजदूर थे, जो श्रमिक थे, वो सबके सब गायब हो गए क्योंकि सबके सब टेक्नोलॉजी के आधार पर वो सब मशीनों से कटाई होने लगी। तो लगभग 20,000 लोग बेकार हो गए। तो ये जो बेरोजगारी का जो प्रेशर है यह भी इन्हें कहीं ना कहीं सच पूछे तो इस तरह की मांग करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो दोस्तों, ये दो इंपॉर्टेंट एंगल खासकर आरक्षण की व्यवस्था को लेकर के हैं जो कि आपको इस लिहाज से अब इन पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, जो तीसरी खबर थी वो जीका वायरस की थी। जीका वायरस की न्यूज आपने सुनी, सबसे पहले युगांडा में 1947 में इसका वायरस मिला था, एक दूसरे एग्जामिनेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। जीका वायरस पर मैंने कल आप लोगों को थोड़ी सी बात भी की थी और एक नॉलेज सेंटर में एक क्लिपिंग्स भी प्रोवाइड की थी, वो आप लोग आप लोगों ने देख लिया होगा। एक जो बड़े इंपॉर्टेंट जो खबर थी जो आख में जो न्यूज में ही थी वो थी कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया कि सरकारी खर्च में वो बढ़ोतरी की जानी चाहिए और सरकारी खर्च में अगर विकास दर को बढ़ाना है तो सरकारी खर्च में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। ये एक अर्थशास्त्र का एक अलग तरह का दोस्तों स्टेटमेंट है। नो डाउट कि जब सरकारी खर्च में बढ़ोतरी होगी तो वो पैसा कहां आएगा। अगर आप सरकारी खर्च करेंगे, मान लीजिए सरकारी सोशल वेलफेयर में वो ज्यादा लगा रही है पैसा, सड़कों सड़कें बनाने में लगा रही है, जैसे मान लीजिए कि वो सातवें वेतन आयोग की मांग हो रही है कि सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के वेतन बढ़ा दिए जाए, लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए सालाना सरकार पर बोझ आएगा तो सरकार का खर्च बढ़ जाएगा। तो अब जब ये पैसा सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के पास आएगा तो उसका वो यूज करेंगे और यूज करके करने से वो पैसा मार्केट में आएगा। जब वो पैसा मार्केट में आएगा तो बट नेचुरली फिर चीजें खरीदेंगे तभी मार्केट में आएगा, फिर वो चीजें बिकेंगी, चीजें बनाने के लिए फिर आपको रोजगार की जरूरत पड़ेगी, तो ये एक साइकिल चलता है, तब हमारी विकास दर आगे बढ़ेगी। ये एक थ्योरी है। लेकिन दूसरी थ्योरी है कि जब सरकार खर्च अपना बढ़ाती है तो सरकार कहां से खर्च अपना बढ़ाएगी, तो उसको पैसा चाहिए, वो पैसा लाने के लिए फिर वो टैक्स लगाती है, टैक्स लगाने से वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं, जब वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं तो फिर वो लोगों की पहुंच से बाहर हो जाती है। तो इसके ऊपर बकायदे दो अलग अलग थ्योरीज चलती हैं। और वैसे भी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो वर्ल्ड बैंक है, उनका लगातार ऐसे देशों पर प्रेशर रहता है कि सरकार अपने खर्चे कम करे, अपने खर्चे कम करे। तो ये इकोनॉमिक्स है मित्रों, इकोनॉमिक्स में बहुत अलग अलग थ्योरीज चलती हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर का हमारा ये स्टेटमेंट है तो एक मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा एक वक्तव्य है जिस पर आपको अर्थशास्त्र की भाषा में और विषय के आधार पर विचार करना चाहिए। एक बहुत अच्छा विषय है मित्रों। और दूसरे बहुत से क्लिपिंग्स हैं, मैं उनको उनके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, न्यूज़पेपर्स में ये सारे के सारे नॉलेज सेंटर में अवेलेबल हैं, वो आप लोग देख लेंगे। मैंने काफी कुछ उसमें अंडरलाइन भी कर दिए हैं। अब मैं आता हूं ईमेल पर। तो सबसे पहले मैं अपने उन 6 नौजवान दोस्तों के नाम बता दूं जो फरवरी की क्लास में आ रहे हैं। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया है और उनके क्षेत्र से आने वाले जो भी स्टूडेंट उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एक पहले दोस्त हैं अभिषेक उपाध्याय जो मुंबई थाने से आ रहे हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9819020304। सेकेंड दोस्त हैं संतोष जो पटना से आ रहे हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9128614934। अगले फ्रेंड हैं अतुल कुमार शर्मा जो बदायूं बरेली से आ रहे हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9410000120। अगले फ्रेंड है प्रहलाद सुपारे जो नांदेड़ से आ रहे हैं। उनका मोबाइल नंबर है 7030126092। नेक्स्ट फ्रेंड है कृष्ण कुमार जो चंदौली वाराणसी से आ रहे हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9598907517। और अंतिम फ्रेंड है हमारे अनूप लोची जो विजाग से आ रहे हैं। अनूप का नंबर है 8500677518। मित्रों इसके साथ ही बहुत से और भी मेल मिले हैं जिन्होंने मेल लिखे हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और देखा मित्रों कि किस तरह से मैं आप लोगों के मेल से ही प्रेरित होता हूं और मार्गदर्शन भी प्राप्त करता हूं, और उसी तरह से मेरी कोशिश होती है कि डेली ऑडियो को मैं आप लोगों के हिसाब से रूप दे सकूं। यह बात अलग है कि मैं हर के चाहे के अनुसार उसे रूप नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप एक स्टूडेंट के रूप में आप अपनी जरूरत लिखते हैं। जैसे कि मेरे पास एक फ्रेंड का मेल आया और उन्होंने बिल्कुल आदेश की भाषा में लिखा कि स्टॉप दिस स्टीरियोटाइप ऑफ प्रोग्राम, मतलब उनको लगता है कि जैसे स्टीरियोटाइप में हो रहा हो। तो अब मेरी मजबूरी यह है कि इसमें लगातार नए नए फ्रेंड्स आकर के जुड़ते चले जाते हैं जो अभी सिविल सर्विस की तैयारी ही कर रहे हैं, जिनको ये स्टीरियोटाइप लगता है वो उनका जो लेवल है वो डेफिनेटली काफी हाई हो चुका होगा, तो उनको ये चीजें उनके काम की नहीं होगी। तो ऐसे फ्रेंड्स के लिए तो मेरी बस केवल यही सलाह हो सकती है कि अगर सच में उनको ऐसा लगता है तो वो अपनी तैयारी को दूसरा स्वरूप दें। लेकिन मेरी चूंकि इसमें स्टूडेंट लगातार आते रहते हैं तो मैं एक कॉमन प्लेटफार्म को लेकर के चलता हूं, तो वो जो कॉमन प्लेटफार्म है मुझे आप ही लोगों से मिलता है। तो दोस्तों आप लगातार मेल लिखते रहिए, उसके आधार पर ही मैं अपने इस ऑडियो को स्वरूप देता रहता हूं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इन्हीं में से कुछ फ्रेंड्स के नाम हैं शैंकी जो कोर्ट द्वारा उत्तराखंड से हैं, ओपी जाट अजमेर से, नीलम बैंकर, राहुल कुमार, अंजू गोस्वामी, स्वेती सिंह, मनीषा बैसया ग्रेटर नोएडा से, पूजा राजपूत प्रतापगढ़ से, पंकज कुमार गुप्ता नासिक से, गोपाल कुमार, आशीष कुमार रोहतास बिहार से, प्रवीण अभिरंजन कुमार न्यू दिल्ली से, सुशील यादव और सिद्धार्थ, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जो मुझे मेल मिले हैं उनमें दो के मेल मैंने बेस्ट में सेलेक्ट किए हैं। एक है शैंकी जो कोर्ट द्वारा उत्तराखंड के हैं और नेक्स्ट है नीलम बैंकर। शैंकी और नीलम, आप दोनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आज के इस डेली ऑडियो को यहीं समाप्त करता हूं। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।